ಗೋಪಿ ಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರ ದಾರಿ 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 ಯಶೋದಾನಂದನ ವ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ವ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಮುನಾ ತೀರವನ ಚಾರಿ ಯಮುನಾ ತೀರವನ ಚಾರಿ ಯಮುನಾ ತೀರವನ ಚಾರಿ ಯಮುನಾ ತೀರವನಚಾರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಜಯ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಗೋಪಿ ಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರ ದಾರಿ ಗೋಪಿ ಜನ ಗಿರಿವರ ದಾರಿ ಗೋಪಿ ಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರ ದಾರಿ ಗೋಪಿ ಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರ ದಾರಿ ಯಶೋದಾನಂದನ ವ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ವ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ವ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಯಮುನಾ ತೀರವನಚಾರಿ ಯಮುನಾ ತೀರವನಚಾರಿ ಯಮುನಾ ತೀರವನಚಾರಿ ಯಮುನಾ ತೀರವನಚಾರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ರಾಧಾ जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत श्री श्रीमद इज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति विदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज उपदेशामृत की श्रील रूप गोस्वामी पाद की समवेत गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामहं ददाति स्वपदान्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा आगे आ जाओ जीवन प्रभु तो हम उपदेश अमृत पर चर्चा शुरू कर चुके हैं तो उपदेश अमृत का जो आमुख है या प्रीफेस है उस पर थोड़े समय के लिए हम चर्चा करेंगे तो श्रील प्रभुपाद हम जानते हैं पिछली बार हमने सुना था कि किस प्रकार से रूप गोस्वामी की जो शिक्षाएं हैं इस उपदेश अमृत में सूत्र रूप में हैं या समराइज फॉर्म में हैं और श्रील प्रभुपाद ने इस ग्रंथ का अनुवाद इंग्लिश भाषा में किया है क्यों किया इंग्लिश भाषा में क्योंकि रूप गोस्वामी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जितने भी आवश्यक शिक्षाएं हैं उनको बहुत सरलता से प्रदान करते हैं और प्रभुपाद इनके तात्पर्य भी बहुत सरल रूप से लिखते हैं ताकि जो मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी है और बहुत लो लेवल का व्यक्ति क्यों ना हो आध्यात्मिक रूप से वो भी उसको समझ सकता है और अपने जो गंदी आदतें हैं उनसे ऊपर उठ सकता है तो श्रील प्रभुपाद इस आमुख को लिखते हैं प्रीफेस को तो ये बहुत गंभीर आमुख या प्रीफेस है इंट्रोडक्शन है बल्कि श्रील प्रभुपाद का हर एक शब्द बहुत गहरा है हर एक जो सेंटेंस है हर वाक्य है वो बहुत गहरा है बहुत मीनिंगफुल है तो प्रभुपाद कहा करते थे मेरी किताबें केवल रीडिंग के लिए नहीं है एक इसके लिए स्टडी करनी चाहिए इनकी रीडिंग अलग है और इनका अध्ययन करना अलग है और पढ़ाई करना अलग है कि हमने पढ़ लिया लेकिन स्टडी करना अध्ययन करने का मतलब है हर एक चीज़ में घुसना और स्क्रूटिनाइजिंगली उस विषय को समझना तो ऐसे श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों की सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिए महिमा को स्थापित करने के लिए गौर गोविंद महाराज कहा करते थे कि दो प्रकार के लोग होते हैं जो प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ते हैं जो भक्तों में भी एक तो होते हैं जो ऊपरी ऊपरी पढ़ते हैं और फिर कहते कि अरे इन बुक्स में है ही क्या हर बार तो वही लिखा है कृष्ण की शरण ग्रहण करो आप शरीर नहीं आप आत्मा हो इंद्रियों पर वश प्राप्त करो और गुरु और कृष्ण की सेवा में लग जाओ तो वास्तव में सारे शिक्षाओं का सार यही है क्या है कृष्ण का शरणम कृष्ण की एकमात्र शरण ग्रहण करना तो लेकिन गौर गोविंद महाराज कहते हैं कि प्रभुपाद के जो ग्रंथ हैं वो एक सागर के भांति हैं सागर के समान है सागर का दूसरा नाम क्या है समुद्र है और एक नाम क्या है रत्नाकर सागर को रत्नाकर कहते हैं रत्नाकर का मतलब है
जिसमें रत्न विपुल मात्रा में है, रत्नों से भरा पड़ा है। तो ऐसे कोई व्यक्ति समुद्र में या सागर में जाता है और ऊपर ही ढूंढता है तो उसको क्या मछलियां वगैरह हाथ में लगेगी, लेकिन जो और डीप व्यक्ति हैं, सागर के नीचे तक अधिक अधिक मात्रा में जाता है तो उसको हीरे मोती जवाहरात माणिक्य आदि मिलते हैं। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद के ग्रंथ हैं, जो केवल ऊपर ही इनको पढ़ता है तो इसके हाथ में कुछ लगता नहीं है। हाँ, लेकिन ये प्रभुपाद के ग्रंथ सागर के भांति हैं, तो इसको इसमें हमें क्या करना होगा, डीपली घुसने का प्रयास करना होगा। हाँ, तो हम हर एक जो भक्त हैं, हर एक जो डिवोटी है, वो उसके साक्षात्कार या अनुभव के आधार पर क्या कर सकता है, विवरण प्रस्तुत कर सकता है। जैसे कोई पंछी है, उसके शक्ति के अनुसार ही तो इतना ऊंचा उड़ सकता है ना, जिसके पास जितना बल है, हाँ, पंखों में ताकत है, सामर्थ्य है, उतना ही वो ऊपर उड़ सकता है। तो उसी प्रकार से हम सब लोग हैं। तो श्रील प्रभुपाद इसके शुरुआत में कहते हैं, कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्रील रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में संचालित होता है। गौड़िया वैष्णव या बंगाली वैष्णव अधिकांशतया श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, जिनमें से वृंदावन के षड गोस्वामी उनके प्रत्यक्ष शिष्य हैं। तो ये बहुत पहले लाइन पर हमने पिछली बार चर्चा किया था कि रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में यह आंदोलन चल रहा है, इसका मतलब है कि रूप गोस्वामी की शिक्षाओं पर यह इस्कॉन आंदोलन क्या है, आधारित है। इसलिए हम रूपानुग हैं। क्या है हम? रूपानुग। और रूपानुग के बाद हम प्रभुपाद अनुग है, मतलब प्रभुपाद के अनुगत होकर उनकी शिक्षाओं को पालन कर रहे हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद शुरुआत में लिखते हैं कि अधिकांशतया महाप्रभु चैतन्य के जो अनुयायी हैं उनमें 6 गोस्वामी बहुत प्रमुख हैं, और ये जो 6 गोस्वामी हैं वो चैतन्य महाप्रभु के प्रत्यक्ष शिष्य हैं। हाँ, कोई कहेगा अरे महाप्रभु ने तो दीक्षा दी नहीं किसी को, वो कैसे प्रत्यक्ष शिष्य हो सकते हैं? लेकिन वास्तव में हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने क्या प्रदान किया है सबको? शिक्षा प्रदान की है। हर गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु मिले हैं पर्सनली, 6 गोस्वामियों को। जैसे हम जानते हैं वृंदावन जाने का चैतन्य महाप्रभु ने पूरी से बहाना बनाया, और चैतन्य महाप्रभु बंगाल होते हुए कहाँ पहुँचे? राम के लिए, जहाँ रूप सनातन निवास करते थे, साकर मल्लिक और दबीर खास के रूप में। और वहाँ रूप सनातन चैतन्य महाप्रभु के शरणागत हो जाते हैं, सारी चीज़ों को उनके चरणों में अर्पित करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु उन दोनों को दीक्षा देते हैं। महाप्रभु ने इन दोनों को पर्सनल दीक्षा दी है, उनका नामकरण किया है। दीक्षा का मतलब है क्या होना चाहिए? नामकरण भी हो जाना चाहिए। हाँ, तो उनका नाम दिया, साकर मल्लिक का नाम सनातन गोस्वामी सनातन दिया, और दबीर खास का नाम क्या? रूप गोस्वामी। तो उस समय ये जीव गोस्वामी बहुत छोटे से बच्चे थे, तो ये रात्रि के समय में मिले थे इनको, दिन में नहीं मिले थे, क्योंकि दिन में तो ये राजा के प्रमुख सेवक है, शासक है, तो दिन में कहाँ मिल सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो छुपकर रूप सनातन इनको मिले थे महाप्रभु को, और रात्रि के समय ही ये इनको भी ले गए थे अपने साथ। किसको? जीव गोस्वामी, जो छोटा सा बालक था, बच्चा ही था। तो महाप्रभु ने जीव के ऊपर कृपा क्या की, अपने 2 चरण कमल जीव जो बच्चा था उसके माथे में रख दिए, और इन रूप सनातन के भी रखे। तो आगे चलकर हम जानते हैं कि महाप्रभु ने इन सबके ऊपर अपनी कृपा की, और साथ साथ उनको शिक्षा भी दी। शिक्षा, कृपा का मतलब क्या है? शिक्षा प्रदान करना, इंस्ट्रक्शन देना, ये कृपा है। अभी हम सोचते हैं कि परीक्षित महाराज के ऊपर शुकदेव गोस्वामी ने कृपा की, क्या कृपा की? उनको उपदेश दिए, कृष्ण के बारे में सुनाया। हाँ, ये वास्तव में किसी भी साधु या गुरु या वैष्णव से हम कृपा चाहते हैं तो उनकी असली कृपा क्या है? वो हमें कृष्ण देते हैं, और कृष्ण किस रूप में देते हैं? नाम के रूप में देते हैं, और कृष्ण कथा के रूप में देते हैं, और कृष्ण सेवा के रूप में, कृष्ण की सेवा में हमें नियुक्त करते हैं। ये वास्तव में किसी वैष्णव की कृपा है। प्रभुपाद एक बार ट्रेन में जा रहे थे, तो भारत के लोगों को तो बड़ा ये लगा रहता ना कि बड़े साधु से मिलूं, जो बड़े बड़े साधु हैं उनको मिले और उनके पास जाकर उनको प्रणाम करे और आशीर्वाद ले। तो प्रभुपाद फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में बैठे थे अपने दो डिसाइपल्स के साथ, तो उस समय ये जो भारतीय दो भारतीयों को लगा कि ये स्वामी जी जा रहे हैं, अमेरिकन शिष्य है, इतना बड़ा इनका आंदोलन है, इनसे हम कुछ आशीर्वाद लेते हैं। अभी प्रभुपाद के शिष्य जानते थे कि भारतीय अधिक से अधिक कोई भी भारतीय आता नहीं है, इस चीज के लिए नहीं आता, आध्यात्मिक चीज के लिए नहीं आता साधु के पास। सब जो भी आते मंदिरों में जाते हैं या साधुओं के पास जाते केवल भौतिक चीज को मांगने के लिए। तो उनके शिष्यों को लगा कि ये दो अभी क्या करेंगे, ये लोग आके हमें मतलब प्रभुपाद को डिस्टर्ब करेंगे। तो ये प्रभुपाद डिसाइपल बाहर जा रहे थे उस बोगी से, तो वहाँ दो लोग खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा नहीं जा सकते आप, तो लेकिन फिर भी एक थोड़ा अंदर घुसा और प्रभुपाद ने देखा उसका फेस। ठीक है, अभी प्रभुपाद ने देखा तो प्रभुपाद ने कहा चलो अंदर आ जाओ, साधु मना नहीं करता। तो आए और बैठे, प्रभुपाद से थोड़ा बातें किए और प्रभुपाद से वो फिर क्या मांगा उन्होंने कि स्वामी जी हम बहुत दुखी हैं। एक ने कहा कि मेरे वो कह रहा था कि मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है कई सालों से, इसके ऊपर कुछ उपाय बताइए। तो प्रभुपाद ने कहा साधु की ना, और वो कहने लगे कि आप बस हमारे ऊपर कृपा करो, आशीर्वाद दो। तो प्रभुपाद के जो दो शिष्य ब्रह्मचारी खड़े थे कहते ये रही मेरी कृपा ये मेरी असली कृपा है। उसका मतलब क्या है, ऐसे बन जाओ, भक्त बन जाओ, हाँ मुंडन करो, तिलक लगाओ, कंठी धारण करो और सदा क्या करो, कृष्ण की सेवा में लगे रहो, कृष्ण का नाम ले लो। तो ऐसे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास एक व्यक्ति गया और वो उन्होंने भी कहा बाबा जी महाराज आप कितना भजन में मग्न रहते हैं, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। तो बाबा जी महाराज ने अपने धोती में हाथ डाला, कॉपी निकाल के दे दिया, कहते ये रही मेरी कृपा, मतलब वैराग्य का जीवन स्वीकार करो, कृष्ण की सेवा में लगो। इस प्रकार से ये चैतन्य महाप्रभु की इन सबके ऊपर कृपा हुई। कृपा का मतलब ही है क्या, इंस्ट्रक्शन, उपदेश, शिक्षा देना, ट्रेनिंग देना। तो ऐसे महाप्रभु ने पर्सनली इन छह गोस्वामियों को ट्रेनिंग दिया था, पर्सनली शिक्षा दी थी, जिसके कारण ये छह गोस्वामी आगे चलकर क्या कीप कर पाए, महाप्रभु के आंदोलन को स्थापित कर पाए। हाँ, तो ऐसे जो छह गोस्वामी हैं चैतन्य महाप्रभु सबको मिले थे, तीन को तो एक ही साथ मिले और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी को शांतिपुर में मिले दो तीन बार और वो महाप्रभु से, महाप्रभु के आंदोलन से बहुत आकृष्ट हो गए और फाइनली हम जानते हैं कि वो भाग के आते हैं और महाप्रभु शांतिपुर में उनको शिक्षा देते हैं, जगन्नाथपुरी में उनको शिक्षा देते हैं, उनको सेवा में लगाते हैं और आगे चलकर उनको अपनी गुंजा माला, जो शंख की छोटे छोटे शंख की बनी हुई माला होती है गुंजा माला, राधा रानी धारण करते वो दी और गोवर्धन शिला वगैरह देकर उनकी सेवा में लगाया रघुनाथ दास गोस्वामी को। और जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी हैं उनको वो बनारस में मिले थे महाप्रभु, हाँ तपन मिश्र के बेटे हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, तो वहाँ महाप्रभु मिले। और जब बड़े हो गए थे, ये महाप्रभु की बहुत सेवा की थी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, दो चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट थे, एक तो कुकिंग में और दूसरा भागवतम को बोलने में, रिसाइट करने में। महाप्रभु ने कहा तुम क्या करो, तुम्हारे लिए ये उपदेश है मेरा, क्या तुम कभी भी विवाह मत करो, और दूसरा क्या, जब तक तुम्हारे माता पिता हैं, क्योंकि माता पिता वैष्णव हैं, उनकी सेवा करो बनारस में रहकर, जब वो देह त्याग करेंगे तब तुम मेरे पास वापस आना। तो तब तक वो वहाँ रहे और उसके पास वो वापस आ गए और वापस आकर जगन्नाथपुरी में जब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिले तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम वृंदावन चले जाओ और वृंदावन जाकर क्या करो, श्रीमद् भागवतम का उच्चारण करो। और फिर जो गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं उनको चैतन्य महाप्रभु श्रीरंग में मिले थे, उनको भी यही आदेश दिया था, जो आदेश उन्होंने किसको दिया था, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को। तो इस प्रकार से उनको बात हो गया, बंद करो। तो बाद में फोन करता हूँ। तो जो छह गोस्वामी हैं उनको चैतन्य महाप्रभु ने पर्सनल शिक्षा प्रदान की थी, इंस्ट्रक्शन दिए थे। तो इसलिए कृपा का मतलब क्या है, हाँ शिक्षा या उपदेश स्वीकार करना। इसलिए शास्त्र कहते हैं श्रीमद् चैतन्य चरितामृत में श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक को कोट करते हुए श्रील प्रभुपद कहते हैं, अनुग्रहाय भक्ताना मानुषम देहमाश्रितम भजते त्वादृशिम क्रीड़ा ये श्रुत्वा तत्परो भवेत। कि भगवान अवतरित होने का एकमेव कारण क्या है, अनुग्रहाय भक्ताना, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान क्या करते हैं, मनुष्य जैसा शरीर धारण करते हैं और भजते तादृशी क्रीड़ा और सर्व सामान्य लीलाएं करते हैं, ये श्रुत्वा जिसको सुनकर क्या करना चाहिए, तत्परो भवेत। सुनने के बाद क्या होना चाहिए, भागवत कहता है किसी चीज को हमने सुना तो उसके बाद सेकंड एक्टिव होनी चाहिए, एक्टिविटी होनी चाहिए तत्परो भवेत, मतलब जिसके बारे में आपने सुना है उनकी सेवा में लगना चाहिए, वो सुनने का क्या है, रिजल्ट है, अन्यथा सुनने का इतना बड़ा और रिजल्ट नहीं है। तो जनरली भगवान कहते हैं कि साधुओं के ऊपर मैं अनुग्रह करने के लिए इस जगत में मैं प्रकट होता हूँ, इस जगत में आता हूँ। तो भगवान को साधुगण बहुत अधिक प्रिय है, इसलिए भगवान कहते हैं नाहम तेभ्यो मनागपी, कि मैं मेरे अलावा वो किसको नहीं जानते और मैं भी अपने भक्तों के अलावा किसको नहीं जानता। तो इसलिए लेकिन कुछ लोग हैं वो क्या करते हैं, भगवान की ये जो शिक्षा है या भगवान अवतरित होते हैं तो उनके शिक्षाओं को मिसअंडरस्टूड करते हैं, मिसअंडरस्टूड को क्या कहेंगे, गलत रूप से उनको समझते हैं, सही रूप से भगवान की शिक्षाओं को नहीं समझते। इसलिए प्रभुपाद ने इस आमुक में ये नरोत्तम दास ठाकुर का गीत लिखा है, क्या है वो गीत, रूप रघुनाथ पदे हये बे आकुति कबे हम बुज बसे युगल पिरती। तो कब वो दिन आएगा जब रूप से लेकर रघुनाथ, इनमें छह गोस्वामी कहे हैं, ऐसे नहीं कि दो ही गोस्वामियों का नाम लिया है, नरोत्तम दास ठाकुर ने रूप से लेकर रघुनाथ हम भट्ट गोस्वामी, जो छह गोस्वामी हैं, उनके चरण कमलों में मेरा कब अनुराग होगा या कब लालायित हो जाऊंगा, किस चीज के लिए, जब मैं गोस्वामियों द्वारा प्रदत्त साहित्य को समझने के लिए उत्सुक होऊंगा तभी मैं राधा तथा कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यवहार को समझने में समर्थ हो सकूंगा। तो मतलब राधा कृष्ण को समझना हमारे बुद्धि से परे है। तो जब हम भक्तों के माध्यम से भगवान को समझने का प्रयास नहीं करते तो हम बाकी कैटेगरी में हम आ जाते हैं। जो भी व्यक्ति भगवान को समझने के लिए भक्तों को लांगने का प्रयास करता है, भक्तों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, वैष्णव के माध्यम से समझना नहीं चाहता, वो डायरेक्टली भगवान को अप्रोच करना चाहता है, वो व्यक्ति इन चार कैटेगरी में आ जाता है। पहली कैटेगरी क्या है, वो मिथ्याचारी बन जाता है। सबसे पहले क्या बनता है, मिथ्याचारी। मिथ्याचारी का मतलब है कि कर्मेंद्रिय संयम्य ये अस्ते मनसा स्मरण, वो बाहरी रूप से तो दिखा रहा है कि मैंने सेफ्रॉन धारण किया है, मैंने विरक्ति का जीवन जी रहा हूं, लेकिन कर्मेंद्रियों को तो उन्होंने संयमित किया है, लेकिन मन के द्वारा क्या कर रहा है, भौतिक भोग के विचारों में लगा हुआ है, इंजॉयमेंट की जो भावना है उसके लिए लगा हुआ है। तो भगवान की ये जो कार्यकलाप है, लीला आदि है, उसका वो मिसयूज करने लगता है और उनका इस्तेमाल किस चीज के लिए करता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, और अकॉर्डिंग टू दैट उस प्रकार से वो लोगों को प्रचार करता है जिसके द्वारा उसकी इंद्रियों की क्या हो जाए, डिमांड्स पूर्ति हो जाए, मिथ्याचारी बनता है। जब हम भगवान को भक्तों के या गुरु के माध्यम से समझने का प्रयास नहीं करते। और दूसरा क्या है, सहजिया बनता है। सहजिया का मतलब है बहुत चीपली ले लेता है, सहजिया का मतलब सहज लेना। तो सहजिया लोग कभी शास्त्र पढ़ना नहीं चाहते, वो कहते भक्त तो भाव को स्वीकार करते हैं, ये बीच में ये सब चीजें हटा दो, भाव होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, हमें मिलते हैं, या कुछ लोग वृंदावन जाते हैं और वो भगवान के जैसे बांसुरी हाथ में लेते हैं, मोर पंख लगाते हैं, गोपियों का वेश धारण करते हैं। आप कभी जगन्नाथपुरी रथ यात्रा जाते हो तो वहां आप ये सहजिया बहुत सारे मिलेंगे। मतलब सहजिया वो है जो साधना नहीं करना चाहते, वो कहते हम तो सेवा कर रहे हैं, भगवान तो हमारी भावना को देखते हैं, लेकिन भगवान उस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे जब तक हम गुरु और वैष्णव के द्वारा दिया हुआ जो मार्गदर्शन है उनके अनुसार अपने आप को साधना में नहीं लगाते। इसलिए सहजिया वो सब चीजों को सहज लेते हैं वो साधना आदि को स्वीकारते नहीं है। क्योंकि ये सहज या लोग रासलीला या गोपियों के साथ कृष्ण की क्रीड़ा है उसी को ही ज्यादा जोर लगाते हैं, कहते कि ये भगवद गीता हो गया, बाकी चीजें वो हमारे सुनने के योग्य नहीं है, वो कभी ग्रंथों को स्पर्श नहीं करते। और इसके द्वारा क्या करते हैं, वो अवैध स्त्रियों के साथ संपर्क को बनाए रखते हैं। तो इसी कारण से ये दूसरी चीज है। और तीसरे कौन है, मायावादी बन जाते हैं हम। जब क्योंकि मायावादियों का क्या है, वो भगवान को मानेंगे, भक्तों को मानेंगे, तो फिर सेवा करनी पड़ेगी। तो सेवा से भागने के लिए बेस्ट है तुम ही निराकार, फिर सेवा ही नहीं करनी पड़ेगी। कि क्यों भोग लगाना है किसी को, है ना, क्यों डेटवारशिप करनी है। जब उसको स्वीकार ही नहीं करते हैं तो फिर वो लोग क्या करते हैं, कहते कि एक निराकार ब्रह्म था, वो क्या किया है, उसने अभी रूप धारण किया है बस। तो वो माया का ही यह है, रूप है, माया का रूप है। तो भगवान के विग्रह, भगवान के दिव्य रूप आदि को स्वीकार नहीं करते, भक्ति या भक्त आदि को स्वीकार नहीं करते। और तीसरे क्या है, फिलोसोफर जिनको क्या कहेंगे, दार्शनिक। दार्शनिक जो लोग होते हैं वो केवल शास्त्रों पर चर्चा करेंगे लेकिन उसका अमल अपने जीवन में नहीं करेंगे। टेबल में बैठकर बड़ी बड़ी बोतलें जूस सब रखेंगे, ग्रंथ हजारों ग्रंथों को लेकर केवल चर्चा करेंगे लेकिन प्रैक्टिकल ना अपने जीवन में लाएंगे ना दूसरों का परिवर्तन कर पाते हैं। तो इस प्रकार से जो लोग क्या करते हैं, जब भक्त का या वैष्णव का मार्गदर्शन स्वीकार नहीं करते तो लोग इस शिक्षाओं को गलत रूप से स्वीकार करते हैं और इन कैटेगरीज में उनको पतन होता है। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट प्यार है जो प्रभुपाद ने इस सॉन्ग को कोट किया है। ये तो हम हजारों बार कितनी बार गाते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा, जब तक मैं इन गोस्वामियों के द्वारा दिए गए ग्रंथों के माध्यम से इनको समझने के लिए उत्सुक नहीं होऊंगा। अतः ये हम जब क्लासेस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। और जब इस प्रकार से हम समझेंगे तभी वास्तव में हम राधा कृष्ण को समझ पाएंगे। ये तो हमारा जीवन बीता जाएगा, राधा कृष्ण वो हमसे हमेशा के लिए दूरी उनसे बनी रहेगी। इसलिए सही रूप से भगवान के कार्यों को समझना मीन्स हमें क्या करना होगा, साधु गुरु और शास्त्र का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा, इनके बिना गति नहीं है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। भक्त के द्वारा ही, भक्तो ही भगवान को जानता है उनके, इसलिए तो हम गुरु के पास जाते हैं। भगवान कृष्ण भी आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करते हैं, चैतन्य महाप्रभु भी ईश्वरपुरी को स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवत तत्व को कौन जानता है, भगवान के भक्त जानते हैं। युधिष्ठिर महाराज महाभारत के वन पर्वों में कहते हैं, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नासब ऋषिर यश मतम न भिन्नम धर्मश तत्वम निहितम गुहाया महाजनोजेन गतास पंतः। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि तर्को प्रतिष्ठा, क्योंकि जो तर्क वितर्क करते लोग भगवान को लेकर, है कि नहीं, भगवान ऐसे हैं, इस प्रकार से समझा जा सकता है, इस माध्यम से समझा जा सकता है, तो ये जो तर्क आदि में लगे होते हैं तो उससे आप किसी कंक्लूजन में नहीं पहुंच सकते, मतलब किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, किसी चीज में फिक्स नहीं हो सकते। श्रुतयो विभिन्ना, जो वेद है उनको श्रुति कहते हैं, तो जितने वेद उपनिषद आदि है उनमें कई विभागों का वर्णन किया गया है, उनको पढ़ के भी व्यक्ति भ्रमित हो जाएगा, वो किसी कंक्लूजन में नहीं पहुंचेगा, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा। नासम ऋषि यश मतम न भिन्नम, और अलग अलग ये ऋषिज हैं जो षड दर्शन को हमने सुना है, जैमिनी है, याज्ञवल्क्य है, ऐसे जो छह प्रकार के ऋषि और भी बहुत सारे मुनिज हैं, इन्होंने भी अलग अलग मतों को प्रेजेंट किया है। मुनि वो है जो दूसरे मुनि से अलग अपना मत नहीं देगा तब तक उसको क्या नहीं कह सकते, मुनि नहीं कह सकते। तो मतलब कोई भी मुनि आपस में मिला हुआ नहीं है उनकी शिक्षा आदि। इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने कहा तो ये मुनियों के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता, ये धर्म का तत्व या भगवत तत्व, धर्मश तत्वम निहितम गुहायाम, गुहा गुफा कहते हैं ना, गुफा, उसी को गुहा कहा गया है। कि धर्म का तत्व या भगवत तत्व कहाँ निवास करता है, गुफा में निवास करता है। और कहाँ, कौन सी वो गुफा है, भक्त का हृदय। इसलिए तो भगवान ने कहा कि आप क्या करो, तत्ववेता के ये करो, शरण हो जाओ, तत्वदर्शी की शरणागत हो जाओ, किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के पास जाओ। धर्मश तत्वम निहितम गुहाया महाजनो जैन गता सपंथा। तो ऐसा धर्म या भगवत तत्व भक्तों के हृदय में है। इसलिए तो भगवान ने कहा जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वार्जुन। हे अर्जुन, जब तक व्यक्ति मेरे जन्म और कार्यों को तत्व से नहीं जानता, तब तक वो मेरे धाम वापस नहीं आ सकता। तो वो तत्व कहाँ स्थिर है, कहाँ है, भक्त के हृदय में है, गुरु के हृदय में है, वैष्णव के हृदय में है। महाजनो जैन गता सपंथा, इसलिए वो कहते हैं बेस्ट विधि क्या है राधा कृष्ण को जानने का, महाजनों ने जिस रोड, जिस पथ का अनुसरण किया है, बस हमें महान महान भक्तों के चरण कमलों में चलना है, उनके मार्गदर्शन पर चलना है। क्योंकि भक्तों का आधार न लेकर कोई कहता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, बहुत संस्कृत का मुझे बहुत ज्ञान है, मैं सारे शास्त्रों की टीकाओं को भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन वो शास्त्र उसको क्या करेंगे, मिसलीड कर सकते हैं, शास्त्र विमोहित कर सकते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी व्यक्ति आदि वो मिसलीड हो गए हैं, जैसे प्रभुपाद के भी डिसाइपल्स इतने बहुत सारे पढ़ लिए शास्त्रों का अध्ययन आदि करके भी प्रभुपाद की शिक्षाओं को नहीं स्वीकारा, वो आध्यात्मिक जीवन खत्म हो गया उनका। तो टीकाओं को पढ़ने से हमें क्या हो जाना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन में टिक जाना चाहिए, है ना, तभी लाभ है। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्या है बेस्ट चीज, क्या है कि हम जो वैष्णवगण है या गुरुगण है उनके मार्गदर्शन में हम चले और उनके माध्यम से हम कृष्ण को समझने का प्रयास करें, तो तभी हम कृष्ण और राधा कृष्ण के कार्यकलापों को समझ सकते हैं। अभी कोई यहाँ तो कहा गया है कि छह गोस्वामियों के ग्रंथ, अभी छह गोस्वामियों के ग्रंथ हमें अभी उठेंगे, उठ के पढ़ना शुरू करेंगे तो हम हमारे बुद्धि से परे है छह गोस्वामियों की शिक्षा। हमारे लिए रूप गोस्वामी का उपदेश हमको समझना इतना कठिन है, रूप गोस्वामी के जो बाकी ग्रंथ हैं हमें तो ये भी पता नहीं कि कितने ग्रंथ दिए हैं। चैतन्य चरितमृत का मध्य लीला आप पढ़ेंगे, मध्य लीला की शुरुआत में ही इन छह गोस्वामियों के ग्रंथों का लिस्ट प्रभुपाल ने दिया है, इतने हैं कि अरे पहले कभी नाम ही नहीं सुने। एक एक ने 50-100 ग्रंथ लिखे हैं और वो संस्कृत और इतने हैवी हैं, वो हमारे धरातल के नहीं है, उसके लिए उन्नत धरातल की आवश्यकता है। तो कई कोई कहेगा कि नहीं छह गोस्वामियों के ग्रंथ के यह वर्णन किया गया है, लेकिन वास्तव में छह गोस्वामियों के ग्रंथों को किसने दिया है, हमें श्रील प्रभुपाद ने दिया है। तो श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना सर्वावश्यक है। जिस प्रकार से कोई छोटा बच्चा कहे कि नहीं अभी ना मैं ये माँ का दूध नहीं पीना है, मुझे क्या करना है, अलग से रसगुल्ले, गुलाब जाम और राइस, दाल, वराइटीज ऑफ मिक्स वेजिटेबल, फ्राई पकौड़ेज वगैरह, जलेबी आदि खानी है, मालपुआ खाना है, तो बच्चा खाएगा तो तुरंत लूज मोशन हो जाएगा, अब मरेगा, उसको एडमिट करना पड़ेगा हॉस्पिटल में। बच्चे के लिए क्या है, माँ का दूध, क्योंकि माँ ने दूध उन चीज़ों से अलग नहीं है, माँ ने वो सारी चीज़ें खा ली हैं और वो सारा दूध के रूप में परिवर्तित हुआ है। तो बच्चा पिएगा जो बच्चे की हेल्थ के लिए आवश्यक है, तो बच्चा धीरे धीरे सुदृढ़ हो जाएगा। वैसे ही हमारे लिए है, प्रभुपाद के ग्रंथों में ऐसा कोई भी आचार्य नहीं है जिसको प्रभुपाद ने उद्धृत नहीं किया है, कोट नहीं किया है, सबकी शिक्षा है। अभी बीच में हम पढ़ रहे थे तो वह वर्णन आया था कि प्रभुपाद एक में ऐसे आचार्य है कि चारों संप्रदाय के आचार्यों की शिक्षा प्रभुपाद के ग्रंथों में है, चाहे वो विष्णु स्वामी है, रामानुजाचार्य है, मध्वाचार्य है, और कौन रह गए, निम्बार्काचार्य, इन चारों की शिक्षा है। आप देखो भागवतम पढ़ते हो, चैतन्य चरितमृत, भक्ति रसामृत सिंधु, तो इन सब आचार्यों को कोट किया गया है। वो जैसे कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण में सारे अवतार इंक्लूड है, उसी प्रकार से प्रभुपाद में क्या है, सारे आचार्य है। क्योंकि उनके लेखनी से सारे आचार्य उनके ग्रंथों में प्रकट हुए हैं। तो इसलिए क्योंकि हम जन्म लेते ही शास्त्र कहते हैं हम अबोध जाता, जाता मीन जन्म लेना, अबोध मीन्स हम जन्म लिए हैं कैसे, मूर्ख मूर्ख, हम पहले मूर्ख ही थे ना, अभी भी मूर्ख है, जन्म लेते हम मूर्ख थे, कोई ज्ञान था हमारे पास नहीं, पिछले जन्म का ज्ञान हम छोड़ के आ गए थे, जो मूर्खतापूर्ण चीजें वो अपने साथ लेके आए हैं, और इसी कारण से बारंबार हमें नहीं जो करना है वही चीजें करते हैं, जो चीज उचित नहीं मेरे भक्ति के लिए वही चीज हम बार बार करते हैं। इसी को प्रहलाद महाराज ने कहा पुनः पुनः चरवित चरवनानाम, ये श्लोक हम बाहर के लिए कोट करते कि कर्मियों के लिए, लेकिन वास्तव में सारे श्लोक हमारे ऊपर लागू होते हैं। पुनः पुनः चरवित चरवनानाम, जो मेरे भक्ति के लिए उचित नहीं है, अनुकूल नहीं है भगवत सेवा के लिए, उनको मैं क्या कर रहा हूँ, बारंबार उन्हीं आदतों को उन्हीं गलतियों को दोहरा रहा हूँ। तो इसलिए वास्तव में भगवान को जानना मीन्स आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से जाना जानना हाँ, और कोई कहेगा नहीं नहीं गुरु के माध्यम से जाऊंगा, लेकिन गुरु आपके पास थोड़ी हर समय के लिए है हाँ, तो गुरु क्या करते हैं, गुरु अपने प्रतिनिधियों को आपके पास छोड़ते हैं हाँ, जो भी आपके जैसे कह सकते सीनियर डिवोटीज हैं या गॉड ब्रदर्स हैं हाँ, उनको गुरु प्रतिनिधि के रूप में छोड़ते हैं ताकि हम उनके द्वारा हाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं, ये प्रैक्टिकल है हाँ। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी ने घर छोड़ा और भाग भाग के आए जगन्नाथपुरी, उन्होंने कहा महाप्रभु के अंडर रहना है, महाप्रभु ने कान पकड़ा, कहते या रघु या ना स्वरूप दामोदर है उनके अंडर रहो और उनसे सारी शिक्षा सीखो, उनसे जिज्ञासा करो, उनके अंडर रह के सेवा करो हाँ। इसलिए जगन्नाथपुरी में तीन रघुनाथ थे, तो ये जो रघुनाथ दास गोस्वामी है इनको पहचाना जाता था स्वरूपेर रघु, कि ये किसका रघु है, स्वरूप दामोदर का है। तो इस प्रकार से वास्तव में हमें अपने जो अथॉरिटीज हैं या डिवोटीज हैं सीनियर गॉड ब्रदर्स आदि हैं हाँ, उनके माध्यम से हमें सीखने का प्रयास करना चाहिए और भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, ये हमारे लिए प्रैक्टिकल है। कोई कहेगा कि नहीं मैं सीधा गुरु की आज्ञाओं को पालन करता हूँ, लेकिन आपके पास आपके गुरु 24 घंटे के लिए नहीं है हाँ, तो आपके पास कौन है, आपके अधिकारीगण है हाँ, आपके डिवोटीज हैं, वरिष्ठ डिवोटीज हैं, उनके द्वारा हम सीखते हैं समझते हैं, तब वास्तव में कुछ होप है आशा है भगवान को समझने के लिए हाँ। तो इसलिए बेस्ट पाथ वो है जो भक्तों ने स्वीकारा है। भागवतम के छठे स्कंध में अजामिल का वर्णन आता है, तो उसमें कहते हैं कि भगवान को जानने का बेस्ट रास्ता क्या है, सद्रिचिनो हियम लोके पंथा क्षेम कुतो भयम सुशीला साधवो यत्र नारायण परायणा। सद्रिचिनो मीन्स प्रॉपर एप्रोप्राइट जो रोड है, प्रॉपर जो रास्ता है हाँ, निश्चय रूप से इस जगत में हाँ जिसका पालन करने से अमंगल नष्ट हो जाएंगे और भय हृदय से खत्म हो जाएगा हाँ। ये ऐसा रोड किसने फॉलो किया है, भगवान के भक्तों ने, सुशीला जो बहुत अच्छा आचरण करते सदाचार, सुशीला सुशीला साधव यत्र, ऐसे साधु जिनके हर कार्य में सदाचार भरा पड़ा है हाँ। नारायण परायणा, क्यों सदाचार है किसी के पास, क्योंकि वो नारायण के प्रति परायण है, और हमारी स्थिति क्या है, शिष्णोदर परायण, सदाचार नहीं है हमारे जीवन में, इसका अर्थ है कि हम क्या है, जिवार लाल से इति उति धाय शिष्णोदर परायण, हम ये हमारे अंदर है। इसलिए सदाचार यदि हम जीवा की लालसा और शिष्ण की जनन इंद्रिय की लालसा के लिए भागते उससे अटैच्ड है, परायण है, तो सदाचार हमें वास नहीं करेगा। सदाचार तो उनमें वास करेगा जो कृष्ण परायण है हाँ। तो ऐसे प्रामाणित ये चीज प्रमाणित की गई है शास्त्रों के द्वारा कि जो भगवान के भक्त हैं उन्होंने जिस पथ का अनुसरण किया है उसी पथ को हमें स्वीकारना चाहिए हाँ। क्योंकि भगवान के जो भक्त है शास्त्रों के सार को जानते हैं हाँ। और हम कई बार हमें लगता है कि अरे शास्त्रों में कुछ है और फिर जो गुरु है या वरिष्ठ भक्त है वो कुछ कह रहे हैं, लेकिन वो सार को जानते हैं, सार को हम पालन करते हैं हाँ, तो क्या होगा हाँ, आप परफेक्शन प्राप्त करोगे हाँ। जैसे प्रभुपाद ने कई चीजें ऐसी इंट्रोड्यूस की हाँ, कि प्रभुपाद ने यह भी इंट्रोड्यूस किया कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र दीक्षा देना है नहीं शास्त्रों में, और कई ऐसी चीजें हैं, लेकिन इन सब का सार क्या है? Always remember कृष्णा, never forget कृष्णा, कि हमेशा कृष्ण का स्मरण हो, कृष्ण का कभी हम भूले नहीं। जितने भी हम नियम पालन करते हैं, चाहे वो ब्रह्मचारी जीवन के हैं, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी और साधना, सेवा, सब चीजें हम कर रहे हैं केवल एक नियम का पालन करने के लिए। यदि वो नियम हमसे पालन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब बाकी नियमों का कोई लाभ नहीं है। वो नियम क्या है? कि हमेशा हमें कृष्ण का स्मरण हो, अब कभी भी हम कृष्ण को ना भूलें। तो इसलिए प्रभुपाद ये जो रूप नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है उसके दो लाइन कोट करते हैं। प्रभुपाद एक जगह इस दो लाइन को ही लिखते हैं भागवतम के किसी एक जगह, तो वहां वो कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि आकुति का मतलब है इगरनेस, इगरनेस का मतलब है लवले, लालसा होनी चाहिए हमेशा। तो किसके अंदर भगवान को जानने के लिए लालसा है, तो उसके लक्षण क्या हो सकते हैं बताइए? हाँ, किसी के अंदर सही में भगवान को जानने के लिए बहुत लालसा है तो क्या क्या लक्षण है हम जिससे पता कर सकते हैं? गुरु के आदेशों को बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा, और क्या हो सकता है? व्याकुलती रहेगी, व्याकुलता, हाँ नहीं, भगवान के पास वापस जाना है, हर कार्य को बिल्कुल गंभीरता से करेगा कि ये मेरे कृष्ण की आखिरी सेवा है, पता नहीं इस सेवा के बाद मैं मर जाऊंगा, अगले कृष्ण की सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा, इस भावना से तड़फड़ता है, लगा रहता है, और क्या हो सकता है? बोलिए बोलिए, हम यहाँ सब आपस में बोलने के लिए आए हैं। विनम्रता की भावना से भक्तन से व्यवहार करेगा और सेवा करेगा, ये भी एक उसका लक्षण है। तो मतलब किसी के अंदर भगवान को जानने के लिए लालसा है, उसका मतलब वो हमेशा उत्साहित रहेगा अपने हर आध्यात्मिक कार्य में। ऐसे नहीं कि मुझे जो अच्छा लगता है उसी में उत्साहित हूँ, हर जो भी कार्य उसके पास है, उसके पास जो भी सेवा दी गई है, उसकी जो साधना है, उसका जो अध्ययन है, वैष्णवों की सेवा आदि है, हाँ, उन सब चीज़ों में सदैव उत्साहित रहता है। हाँ, लोभ साधु संगे हरि कथा, तो ये लोभ हमारा और बढ़ता है जब हम साधुओं का संग करते हैं और क्या करते हैं, हरि कथा आदि का श्रवण करते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद इसी जो अनुवाद है कि कब मैं गोस्वामियों के द्वारा साहित्य को समझने के लिए उत्साहित हो जाऊंगा, ताकि मुझे राधा कृष्ण के प्रेम व्यवहार को समझना इजी हो जाएगा। तो प्रभुपाद उसी को एक और तात्पर्य में लिखते हैं, हाँ, कि इसको प्रैक्टिकल कैसे हम जाने, कि कैसे हमारे लिए वो उचित है, प्रैक्टिकल जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं, इन अदर वर्ड्स, अनलेस वन इज ट्रेंड अंडर द डिसाइपलिक सक्सेशन ऑफ द गोस्वामीज, वन कैनॉट अंडरस्टैंड राधा कृष्णा। प्रभुपाद ने कहा, जब तक कोई व्यक्ति इस गोस्वामियों की परंपरा में किसी को ट्रेनिंग नहीं मिला है, प्रशिक्षण नहीं मिला है, हाँ, तब तक वो राधा कृष्ण को समझ नहीं सकता। केवल किताबों को पढ़ के वो राधा कृष्ण को समझ नहीं सकता, बल्कि गोस्वामियों के परंपरा में आए हुए जो वैष्णवगण है, उन भक्तों के अंडर ट्रेनिंग हम जब तक नहीं लेंगे, तब तक हम राधा कृष्ण को समझना हमारे लिए बहुत असंभव है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ट्रेनिंग। हाँ, किसी भी चीज के लिए हम भौतिक जगत में बचपन से हम देखते हैं, कोई भी छोटी चीज करनी है तो उसके लिए कितना ट्रेनिंग है। ड्राइविंग करना है तो ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल है। हाँ, कुछ भी आपको पढ़ना है, कुछ बनना है, हर चीज के लिए ट्रेनिंग है। हाँ, तो ये ट्रेनिंग आध्यात्मिक जीवन में बहुत आवश्यक है। अभी तो ये खत्म हो रहा है। हाँ, तो प्रभुपाद ने ये जो आंदोलन बनाया है कि हर एक व्यक्ति को ट्रेन किया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि वो भगवत भक्ति को गंभीरता से ले सके। हाँ, पहले क्या होता था कि जैसे ही बच्चा 5 साल का हो जाता था तो उसको, हाँ, माता पिता कहाँ भेजते थे? गुरुकुले, वसंदांतुर गुरु और हितम, गुरुकुल में भेजते थे, और वहां जाकर गुरु के हित के लिए दासवत सेवा करने में लगा रहता था, और 25 साल तक प्रशिक्षण लेता था। किससे? गुरु से शिक्षा लेता था, ट्रेनिंग लेता था। हाँ, तो आध्यात्मिक जीवन में हमें मिलिट्री ट्रेनिंग होना चाहिए, मिलिट्री के भांति हमें ट्रेन होने के लिए तैयार होना चाहिए। हाँ, क्योंकि मिलिट्री हमेशा बॉर्डर में रहती है और क्या करती है, जाकर शत्रुओं के साथ युद्ध देती है, युद्ध करती है, मिलिट्री के जो जवान हैं। यदि उन जवानों को ट्रेनिंग नहीं मिलेगा तो वो बेचारे सारे मरे जाएंगे कुछ ही क्षणों में। तो उसी प्रकार से हमने कृष्ण भक्ति को स्वीकारा है, मंदिर ज्वाइन किया है और हम बहुत आगे निकल चुके हैं। अभी वापस जाना हमारे लिए बड़ा कठिन है कि नहीं। अभी हमने कंठी धारण कर दिए, तिलक लगा दिया है, शिखा रख दी है, वस्त्र आदि चेंज कर दिए है, लाइफस्टाइल सब कुछ चेंज हो गया। अभी हमने ये एक बॉर्डर क्रॉस कर लिया है, हमें अपना जीवन एक आगे बढ़ा दिया है और इससे पीछे जाना हमारे लिए क्या है, भयावह है। हम रह नहीं पाएंगे भौतिक कर्मी जैसा जीवन में, अभी जाकर रह पाएंगे नहीं। हमारी स्थिति तो वैसे हो जाएगी, मछली जैसे तड़पता है वैसे रहेंगे हम। भक्ति या भक्तों के संग को छोड़ के आपको किसी कर्मियों के संग में भेजा जाए तो हमें वहां अच्छा नहीं लगेगा। हम तो मछली के भांति तड़पने लगेंगे जो पानी से बाहर है। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से जवानों को ट्रेन करके बॉर्डर में शत्रुओं के साथ युद्ध करने के लिए भेजा जाता है, उसी प्रकार से हमें यहाँ ट्रेनिंग की आवश्यकता है। क्योंकि हमने किस किस के साथ युद्ध शुरू किया है, माया के साथ। हाँ, बैटल अगेंस्ट माया, माया के साथ युद्ध हमने छेड़ा है। हाँ, और इस युद्ध के लिए और वास्तव में हमें तैयार हो जाना चाहिए, अपने आप की ट्रेनिंग की आवश्यकता है। इसलिए तो ये ट्रेनिंग, इसलिए इस्कॉन में जब नए नए भक्त आते तो प्रभुपाद ने उनके लिए क्या शुरू किया था, न्यू भक्ता प्रोग्राम। क्योंकि बिना ट्रेनिंग के भगवत भक्ति कंटिन्यू कर ही नहीं सकते। क्यों ट्रेनिंग आवश्यक है? ट्रेनिंग से दो चीजें आती है आपके जीवन में। हाँ, पहली चीज क्या है, जब आप प्रॉपरली ट्रेनिंग लेते हो आध्यात्मिक जीवन में, तो सबसे पहली चीज आती है कि आपके हृदय की जो भोग इच्छा है, भोग करने की जो इच्छा है, वो क्या होने लगती है, डिस्ट्रॉय होने लगती है, खत्म होने लगती है। हाँ, कई बार हम देखते हैं कि अरे इतने साल हो गए, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 20 साल हो गए कृष्ण भक्ति में इस्कॉन में आकर, फिर भी मेरा हृदय हर समय भोग करने के लिए कर्मी व्यक्ति की तरह भागता है, दौड़ता है मन। हाँ, गंदे विचारों से भरा रहता है, अपनी सेवाओं के समय, जप के समय, कृष्ण कथा के समय सदैव मैं प्लान बनाते रहता हूँ कब वो समय आएगा कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी ताकि मैं अपने भोग को, भोग की इच्छा को पूर्ति करूंगा। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उस भक्त को ट्रेनिंग ही नहीं मिला। हाँ, शुरुआत से ट्रेनिंग ही नहीं लिया, तो ट्रेनिंग लिए बिना ये भोग इच्छा हमारे हृदय से निकलेगी नहीं। हाँ, भोग इच्छा बहुत प्रबल है। पूरे दिन में हम वास्तव में कृष्ण को भोग देने की बजाय हम भोग स्वीकार करते हैं। हम अपने आप को आनंद देने में लगा रहते हैं। सारे जो योजना है आज का दिन कैसे बिताऊंगा, वो किसके अनुसार होता है, मेरे अनुसार। मेरा मन क्या कह रहा है, मेरी इंद्रियों की क्या डिमांड्स हैं, मेरी क्या इच्छाएं हैं, मेरे क्या प्लान है। हम भूल जाते हैं कि मेरे लिए मेरे गुरु के क्या प्लान है, वैष्णव के क्या प्लान है, अथॉरिटीज के क्या प्लान है, वो हम स्वीकार नहीं करते। इसलिए ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है। हाँ, ट्रेनिंग से पहली चीज भोग की इच्छा खत्म होती है और दूसरा क्या है, ट्रेनिंग के द्वारा हम कृष्ण भावना में फिक्स हो जाते हैं। ये दूसरी चीज है, स्थिर हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि जो स्थिर हम देखते हैं भगवत भक्ति में स्थिर नहीं है। हाँ, हम तो बंदर की तरह अलग अलग उसमें उड़ते रहते हैं। बंदर अलग अलग टहनियों में, अलग अलग झाड़ों में, पेड़ के ऊपर दौड़ता है, तो उसके बाद ही हम भक्ति में स्थिर नहीं है, अपने सेवा आदि में स्थिर नहीं रहते बंदर के बाद ही। बंदर तो कोई ट्रेनिंग स्वीकार करता नहीं, लेकिन जब उसके गले में पट्टा डालते हैं, जबरदस्ती ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग वास्तव में, ट्रेनिंग का मतलब है कि आपको स्वयं ही तपस्या का जीवन स्वीकार करने के लिए तत्पर होना चाहिए। ट्रेनिंग का मतलब है कि हम एक पत्थर के समान है जिसको कोई आकार नहीं है, और वो पत्थर अपने आप को क्या करता है, हाँ, जो कार्विंग करने वाला क्या कहते हैं उसको, कारीगर होता है, अपनी छन्नी और हथौड़ा लेता है, जिस पत्थर को कोई शेप नहीं है, हाँ, उसको क्या करता है, रोज मारता है मारता है मारता है। कोई कहेगा कि अरे टुकड़े निकल रहे हैं उस पत्थर के, कितना दर्द हो रहा होगा उस पत्थर को, हाँ, छन्नी से मारा जा रहा है, और वो क्या होता है, कुछ ही समय में इतना सुंदर शेप धारण करता है। तो उसी प्रकार से ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग में क्या है कि थोड़ा फोर्स है हमें, हाँ, थोड़ी तकलीफ होगी कि साधना करो, ये करो, वो करो, तो थोड़ा तकलीफ, लेकिन देखेंगे कुछ समय के बाद इतना सुंदर शेप तैयार आएगा कि हमारा सौंदर्य बढ़ने लगेगा। तो क्योंकि क्यों हम ट्रेनिंग स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे अंदर ईगो भरा पड़ा है, अहंकार, और अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, मूर्खता के कारण सोचता है कि मैं, अहंकार के कारण सोचता है कि मैं ही करता हूं, मुझे ही लगता है कि ये चीज सही है, इसके कारण हम क्या करते हैं, अपने आध्यात्मिक जीवन का विनाश करते हैं। हाँ, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अपने अहंकार के कारण गुरु वैष्णव और भक्तों की सेवा नहीं करते, स्वीकार नहीं करते उपदेशों को, बात को हम मानते नहीं हैं। हाँ, कृष्ण की बात हम नहीं मानते अपने अहंकार के कारण, कृष्ण को छोड़ के हाँ इस जगत में हम आए हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते थे एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड ट्रेनिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट डिवोटीज, ये बहुत निश्चित महत्वपूर्ण है कि भक्त के अंडर हम सेवा करें। क्यों? हाँ, क्योंकि अहंकार जाएगा नहीं जब तक हम ट्रेनिंग नहीं लेंगे, और ये ट्रेनिंग क्या करता है, हमारे अहंकार को खत्म करने लगता है। हिमालय में रहकर, गाजर खाकर रहकर, नंगे रहकर बर्फ में, हाँ, वो बड़ी तपस्या नहीं है। भक्तगण कहते कि इस्कॉन के अंदर रहकर, भक्तों के संग में रहकर, भक्तों को सहन करते हुए, और अधिकारी या जो अथॉरिटीज है उनकी बात को मानकर सेवा में लगे रहना, इससे बड़ी तपस्या इस संसार में नहीं है। हाँ, वो तो कोई व्यक्ति हिमालय में जाकर अकेला रह रहा है, गाजर खा रहा है, नंगा रह रहा है, वो तो केवल अपने अहंकार को ही बढ़ा रहा है ना, अहंकार बढ़ रहा है कि देखो मैं कितना तपस्वी हूं। लेकिन अहंकार को ठेच कब लगती है, जब आप भक्तों के संग में आते हो। हाँ, अधिकारी या अथॉरिटीज आपको कुछ, हमें कुछ सर्विसेस में लगाते हैं, हाँ, और हमारे अहंकार फिर चूर चूर होने लगता है, हमें थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन कृष्ण को आनंद होता है। कृष्ण कहते देखो मेरा भक्त हाँ तैयार हो रहा है मेरी ओर आने के लिए, है ना, तैयारी कर रहा है। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण है कि आज्ञा का पालन जब हम करते हैं। तो शुरुआत के समय में हाँ ब्रह्मचारी को ट्रेनिंग दिया जाता था गुरु के पास 25 साल तक, उससे क्या हो जाता था, मैनुअल सर्विसेस, जो निम्न से निम्न सेवाएं वो करते थे, उन सेवाओं के द्वारा हाँ वो बिल्कुल अहंकार से रहित हो जाते थे। हाँ, इसलिए हमें ये बहुत आवश्यक है, हाँ, ट्रेनिंग, बिना ट्रेनिंग के हम ये जो मिथ्या अहंकार को हमने धारण किया है हाँ उससे हम मुक्त नहीं हो सकते। तो कृष्ण भावना का ट्रेनिंग इतना पावरफुल है कि हम चाहे हमारे अंदर जितनी मर्जी गंदी आदतें क्यों ना हों, चाहे हम जितनी मर्जी नीच स्थान से क्यों ना आए हों, हम क्या हो जाएंगे, शुद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ सब चीज़ों की ट्रेनिंग है। प्रभुपाद ने हिप्पीज जैसे लोगों को ट्रेन किया था, हिप्पीज भी क्या हो गए, ट्रेनिंग उनको प्राप्त हुआ प्रभुपाद के माध्यम से, और प्रभुपाद ने सब चीज़ों का उनको ट्रेनिंग दिया, कुकिंग से लेकर, साड़ी पहनने से लेकर, मृदंग बजाने से लेकर, करताल से लेकर, वस्त्र पहनने से लेकर, एक व्यवहार कैसे होना चाहिए, वाणी कैसे बोलना चाहिए, हाँ कैसे खाना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, ये सब चीज़ों का ट्रेनिंग, एंड ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है, तब तक हम वास्तव में वैष्णव नहीं बन सकते। प्रभुपाद ने कहा व्हाट इज द यूज ऑफ ए लेक्चर अनलेस यू ट्रेन देम, कि आपके बड़े बड़े प्रवचनों का क्या लाभ जब तक आप उनको शिक्षा ट्रेनिंग नहीं दोगे, प्रशिक्षित नहीं करोगे। तो इसलिए ये ट्रेनिंग एस्पेक्ट श्रील प्रभुपाद ने इस मूवमेंट में डाला है। और ट्रेनिंग का मतलब क्या है, एक बार प्रभुपाद को पूछा कि ट्रेनिंग का क्या अर्थ है, प्रभुपाद ने कहा ट्रेनिंग मीन्स रेगुलेटेड लाइफ। कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति ट्रेनिंग प्राप्त किया है, प्रशिक्षित है, उसका अर्थ है कि उसकी दिनचर्या क्या है, रेगुलेटेड है। ब्राह्मण का मतलब ही है कि हर समय या हर रोज उचित समय में आपने कार्य करता है, वो ब्राह्मण गुण है, ये नहीं कि वो कभी भी कहीं भी कार्य में लगा पड़ा है। तो ट्रेनिंग का मतलब है कि पूरी जो दिनचर्या आदि है वो हमारी रेगुलेटेड होने चाहिए। रेगुलेटेड का मतलब है कि सुबह उस समय में उठना मीन्स उठना, जो भी हमें मॉर्निंग प्रोग्राम से उनको अटेंड करना, इस समय मुझे अपना रेस्ट करना है, या वॉट एवर, जो भी रेगुलेटेड जीवन जीना गुरु और साधु या वैष्णव के मार्गदर्शन में। तो रेगुलेटेड लाइफ नहीं है हमारा, तो फिर हम कैसे ब्राह्मण बन सकते हैं, और ब्राह्मण नहीं तो फिर हम वैष्णव कहाँ बन सकते हैं। हाँ, तो ट्रेनिंग का मतलब ही है हाँ सत्वगुण में आना, सत्वगुण में कार्य करना, और सत्वगुण शुद्ध सत्व में जाने के लिए हाँ लाभदायक है। तो प्रभुपाद को पूछा एक रिपोर्टर ने कि आपका ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? तो प्रभुपाद ने कहा, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। तो वो भ्रमित हो गया। प्रभुपाद ने कहा हर चीज या महत्वपूर्ण है कृष्ण भावना में, हर चीज, हर जो भी एस्पेक्ट है हमारे भक्तिमय जीवन का, चाहे वो कुकिंग है, चाहे वो कीर्तन है, चाहे वो ड्यूटी वर्शिप है, चाहे झाड़ू लगाना है, चाहे मैनेजमेंट करना है, चाहे जाकर प्रचार करना है, सारी चीजें महत्वपूर्ण है। हाँ, तो फिर तो इसलिए प्रभुपाद ये ट्रेनिंग पर जोर देते थे। और एक लेटर में प्रभुपाद कहते हैं कि उनके एक डिसाइपल थे उपेंद्र, उनको लेटर लिखते हैं तो उनको कहते हैं कि ट्रेनिंग का अर्थ क्या है, त्रिनादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदाहरी। ट्रेनिंग का मतलब है कि हमारे अंदर ये गुण आ जाए। ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्ञानशाली हो जाओ, बहुत पंडित बन जाओ, लेकिन आपके पास ये सदाचार नहीं है तो ऐसा ट्रेनिंग यूजलेस है। ट्रेनिंग का मतलब ये है कि तृणादपि सुनिचेन, तृण के समान विनम्रता की भावना सबके प्रति आ जाए, हाँ, और वृक्ष के समान सहनशीलता की भावना, और हाँ क्या, कीर्तनीय सदाहरी, भगवान के नाम के प्रति हाँ हमारा गहरा आकर्षण। हाँ, तो इसलिए ये ट्रेनिंग एस्पेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है और इसको हम रोज मांगते हैं, हम रोज प्रार्थना करते कि मुझे ट्रेनिंग चाहिए, किसी भक्त के अंडर ट्रेनिंग चाहिए। हाँ, सखीरा अनुगत कर, रोज गाते कि नहीं तुलसी आरती में? हाँ, रोज हम तुलसी महारानी को कहते हैं कि मुझे किसी भक्त के अंडर क्या दे दो, ट्रेनिंग के लिए तैयार, किसी भक्त दे दो जिसके अंदर मैं ट्रेनिंग ले लूं। सखीर अनुगत, अनुगत का मतलब ही है अनुगत होकर मैं सीख लूं। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी रूप रघुनाथ दास गोस्वामी को, जैसे मैंने कहा, स्वरूप दामोदर के पास रखा था। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, जिस प्रकार से ये गोस्वामीगण जिन्होंने सीखा चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, और प्रभुपाद ने कहा कि वास्तव में इनके ग्रंथों को समझने का मतलब ही है गोस्वामियों के परंपरा में आए हुई जो ये परंपरा है उसमें भक्तों के द्वारा ट्रेनिंग या प्रशिक्षण प्राप्त करना, ये वास्तव में इसका असली अर्थ है। कि जब तक हम ट्रेनिंग या प्रशिक्षण भक्तों के मार्गदर्शन में नहीं प्राप्त करेंगे तब तक हम राधा कृष्ण को हाँ समझ नहीं पाएंगे। हाँ, ट्रेनिंग किस चीज का चाहिए हमें? तीन चीजों का चाहिए। हाँ, क्या है तीन चीजें? साधना, सिद्धांत और सदाचार। इन तीन चीजों का ट्रेनिंग आवश्यक है। हाँ, साधना, साधना कैसे होनी चाहिए, साधना का इम्पोर्टेंस क्या है, और दूसरा क्या है? सिद्धांत। हाँ, सिद्धांत का मतलब ही जो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, शास्त्रों की चर्चा, फिलोसफी का डिस्कशन, ग्रंथों की चर्चा करना, सिद्धांत को समझना, हाँ, भावुकता से, ताकि हम भावुकमय आध्यात्मिक जीवन को नहीं ग्रहण करेंगे। क्योंकि जो भावुकता से आध्यात्मिक जीवन को ग्रहण करता है वो लंबा रेस का घोड़ा नहीं है। हाँ, साधना, सिद्धांत और दूसरा है सदाचार। इसी से क्या आएगा? सत्यम शिवम सुंदरम। इसी से जीवन क्या होगा? सत्यम शिवम सुंदरम। वास्तव में साधना का मतलब है सत्यता, और सिद्धांत का मतलब है मंगलमय, और सदाचार से ही व्यक्ति क्या लगने लगेगा? सुंदर लगने लगेगा। कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानमय है, ज्ञानवान है, लेकिन उसका आचरण ठीक नहीं है, सदाचार नहीं है, तो जितना मर्जी सुंदर हो या शारीरिक सौंदर्य है लेकिन सदाचार नहीं है उसके पास, तो वो सौंदर्य मान नहीं लगता। लेकिन जिसके पास सदाचार है हाँ वो सौंदर्यवान है। तो इसलिए जो सारा ज्ञान है, सारी साधना है, वो हमें एक ही ओर ले जाती है, और वो क्या है? सदाचार। हम साधना कर रहे हैं, ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, पंडित बन रहे हैं, हाँ, उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? हमारे अंदर सद आचार आना चाहिए, क्वालिटीज डेवलप हो जानी चाहिए। और बलराम ने इसी कारण से, जब बलराम महाभारत के युद्ध के समय, उन्होंने कहा मैं महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लूंगा, मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि दोनों पार्टियों से प्रेम था, दुर्योधन के वो गुरु थे, गदा गुरु, हाँ गदा सिखाते थे, और अर्जुन आदि के भी, पांडवों के भी, भीम वगैरह के। तो उन्होंने कहा मैं अभी दोनों ये पार्टियां मेरे बहुत दोनों प्रिय हैं, तो कैसे किसी पार्टी का मैं साथ नहीं लूँगा, मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ, इस युद्ध के बाद ही आऊँगा। तो ऐसे बलराम भ्रमण करते करते सब जगह गए, नैमिषारण्य में गए, और नैमिषारण्य में देखा कि जो ऋषि मुनि हैं वो बैठे हुए थे नैमिषारण्य में, और ये जो रोमहर्षण सूत है वो लेक्चर देने के लिए व्यास आसन पर बैठे थे, और बाकी सारे श्रोतागण बैठे थे। जब ये पहुंचे वहां बलराम, तो सब आदर सम्मान के साथ हाथ जोड़कर खड़े हो गए, लेकिन एक ही व्यक्ति नहीं उठा। कौन थे? रोमहर्षण सूत। सूत का मतलब है नीचा, नीच ब्राह्मणों से नीच ये है, जात का होता है सूत। हम शायद घोड़े पालन करने वाले या कुछ ऐसे होते हैं सूत जो होते हैं, हाँ जैसे कर्ण का जन्म भी सूत परिवार में हुआ था ना, तो वैसे ये सूत भी हैं। हाँ ये जो सूत गोस्वामी, हाँ सूत गोस्वामी के बेटे हैं, पिता हैं रोमहर्षण सूत। हाँ तो ये जो रोमहर्षण सूत को जब देखा कि उन्होंने कहा ये तो बहुत घमंड आ गया है, इसको एटिकेट सदाचार का पता ही नहीं है, कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्या आचरण होना चाहिए। हाँ सारे सब ऋषि मुनि सब बैठे उठ खड़े हुए बलराम के लिए। तो फिर बलराम ने बहुत महत्वपूर्ण हाँ चीज बोली। बलराम ने कहा ऋषिर भगवता भूत्वा शिष्योधित्य बहूनि च से इतिहास पुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वशः। उन्होंने कहा ऋषिर भगवतो भूत्वा शिष्य, कि ये जो बैठा हुआ है ना रोमहर्षण सूत, ये तो व्यासदेव का शिष्य है, इतना बड़ा गुरु का शिष्य है। आदित्य बहुनिच, और बहुत पढ़ाई किया है इन्होंने, क्या क्या पढ़ाई किया, किस किस में वो एक्सपर्ट है, से इतिहास, हाँ जो महाभारत रामायण है, पुराण आदि है, धर्मशास्त्र सर्वशा सब में बहुत विद्वान है। लेकिन ये विद्वत्ता में ये चीज नहीं है, दो चीजें, विद्वत्ता का रिजल्ट क्या होना चाहिए, दो चीजें हैं वो नहीं है। क्या नहीं है? अदंतस्य विनीतस्य वृथा पंडित मानिना, इसका तो अपने इंद्रिया मन आदि पर वश नहीं है, और दूसरा क्या है, विनीतस्य विनम्रता का भावना नहीं है। वृथा पंडित मानिना, अपने आप को क्या मानता है, वृथा पंडित मान रहा है। न गुनाय भवन्ति स्म नटसेवा जितात्मनः, इसमें तो कोई गुण नजर ही नहीं आ रहे, इसने तो शास्त्रों को वैसे ही पढ़ा जैसे किसी ड्रामा में कोई रोल करने वाला अपने के लिए जितना आवश्यक है उतना ही पढ़ता है, और वो ड्रामा जब तक है तब तक ही यूज करता है, उसके बाद नहीं। हाँ जैसे महाभारत आज ये जो सीरियल बने हैं, तब तक ये जो युधिष्ठिर का रोल कर रहा है तो तब तक वो युधिष्ठिर है, घर वापस जाकर अपने बाकी कार्य में पूरा रावण जैसा कार्य करता है ना, कंस या दुर्योधन जैसा। हाँ जैसे जिसने राम का रोल किया था वो बहुत सिगरेटें पीता था। हाँ तो ये सब चीजें हैं। उन्होंने कहा ना, बलराम ने कहा इस व्यक्ति ने तो शास्त्रों का अध्ययन उस नाटक या नट या हीरो जितना उसको पढ़ने के लिए आवश्यक होता है उतना ही किया है, और बाकी इसमें कोई गुण आदि नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ तो इसलिए इन सब का कहने का तात्पर्य है कि इन सब का उद्देश्य क्या है, ट्रेनिंग या शास्त्र अध्ययन आदि, आदान्तस्य। हाँ दूसरा क्या है, विनीतस्य। तो ट्रेनिंग का अर्थ ही है कि अपने आप को गुरु और वैष्णव के प्रति विनम्रता की भावना जागृत करना। इसलिए और कई बार हम विनम्र होने का ढोंग करते हैं, है कि नहीं, तो वो हमारे लिए महंगा पड़ता है। तो जो भी नेचुरल है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए, उसी को धारण करना चाहिए। हाँ किसी को आप रिस्पेक्ट करते हो, किसी को आप आदर देते हो, उसका मतलब है कि आप तैयार रहते हो उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए, इसको विनम्रता कहा गया है। मैं भी आप उसको प्रणाम नहीं कर रहे हो, प्रणाम करना हर रोज विनम्रता, उससे विनम्रता हमारे अंदर विनम्रता नहीं है, लेकिन हम जब प्रणाम आदि करते हैं तो विनम्रता डेवलप हो सकती है। और दूसरा ये क्या है, कोई कहता नहीं मैं मन में ही प्रणाम करता हूँ, मन से बहुत आपका आदर सम्मान करता हूँ। हाँ मन में आदर सम्मान करने का मतलब है शास्त्र कहते हैं कि वो क्या करता है, आज्ञा का पालन करता है, उससे पता चलता है कि रिस्पेक्ट है या नहीं है। हाँ तो इसलिए बलराम आगे कहते हैं कि इस कारण ऐसे जो लोग हैं ये ढोंगी बने हुए हैं और मेरा अवतार उसी के लिए हुआ है। बलराम कहते एतदार्थो ही लोकेस्मिन् अवतारो मया कृता, इसलिए मैं इस जगत में अवतरित हुआ हूँ। वध्या में धर्म ध्वजिनास्ते ही पातक की नोधिना आदि कहा कि वध्या में धर्म ध्वजी, धर्म ध्वजी का मतलब धार्मिक जीवन पालन करने का जो ढोंग कर रहा है, दिखावा कर रहा है, उसको धर्म ध्वजी कहते हैं। बलराम ने कहा ऐसे लोगों का वध करने के लिए मैं आया हूँ और ऐसे बहुत सबसे बड़े पापी लोग हैं जो धर्म के नाम पर क्या कर रहे हैं, मिथ्याचारी जीवन जी रहे हैं। हाँ, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है ट्रेनिंग एस्पेक्ट। हाँ, और इस जो प्यार है, इस प्यार का अनुवाद ही यही है। हाँ, कि कोई कहेगा कि ग्रंथों को पढ़ूंगा मैं सीधा गोस्वामियों के, तो आप नहीं समझ सकते राधा कृष्ण को। तो प्रभुपाद उसी को एक तात्पर्य में लिखते हैं कि जब तक इस गोस्वामियों की परंपरा में कोई ट्रेनिंग प्राप्त नहीं करता, हाँ, तब तक वो राधा कृष्ण को समझने का अधिकारी नहीं है। हाँ, तो इसलिए, और ट्रेनिंग का मतलब क्या है, हाँ, ट्रेनिंग क्यों प्राप्त करना चाहिए, जैसे मैंने कहा एक है, हाँ, किस चीज़ के लिए ट्रेनिंग, हम ट्रेनिंग प्राप्त करने की दो चीज़ें मैंने बताई थी, क्या है वो दो चीज़ें, एक है कृष्ण भक्ति में फिक्स हो जाना और दूसरा है भोग इच्छा खत्म हो जाएगी जब हम रेगुलर ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं। हाँ, तो इसलिए, और ट्रेनिंग, हम ट्रेंड हो गए हैं, प्रशिक्षण हमने प्राप्त किया है, उसका रिजल्ट क्या है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदाहरि। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद इस रूप रघुनाथ पदे हई बे आकुति कबे हम भुज बसे युगल पीरिति, इससे हमें ये शिक्षा प्रदान करते हैं। तो आगे मैं एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव मानव समाज को कृष्ण विज्ञान का वरदान देने के लिए हुआ। भगवान कृष्ण के समस्त कार्यकलापों में सबसे उत्कृष्ट है गोपियों के साथ उनके माधुर्य प्रेम की लीलाएं। श्री चैतन्य महाप्रभु गोपियों में सर्वश्रेष्ठतम श्रीमती राधा रानी के भाव में प्रकट हुए। अतएव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन कार्य को समझने तथा उनके पद चिन्हों का अनुगमन करने के लिए हमें छह गोस्वामियों श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट तथा दास रघुनाथ का अत्यंत गंभीरतापूर्वक अनुसरण करना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी सभी गोस्वामियों के नायक थे। उन्होंने हमें हमारे कार्यकलापों का मार्ग निर्देशन करने के लिए तथा अनुसरण हेतु हमें ये उपदेश अमृत प्रदान किया है। जिस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पीछे शिक्षाष्टकम नाम के 8 श्लोक छोड़ गए थे, उसी तरह श्री रूप गोस्वामी ने हमें उपदेश अमृत प्रदान किया है जिससे हम शुद्ध वैष्णव बन सके। इतना महत्वपूर्ण है। उन्होंने पहले कहा कि गंभीरतापूर्वक अनुसरण करना चाहिए। हाँ, तो गंभीरतापूर्वक अनुसरण मतलब हमें ट्रेनिंग को गंभीरता से लेना चाहिए। हाँ, आज्ञाओं को गंभीरता से पालन करना चाहिए। और दूसरा क्या है, क्यों ये उपदेश अमृत है, उपदेश अमृत का एक ही उद्देश्य है कि हम क्या बने, शुद्ध भक्त बने। इसमें लिखा ना प्रभुपाद ने, शुद्ध वैष्णव बने। तो वास्तव में हम ये अभिलाषा लेकर यहाँ बैठे हैं, शुद्ध वैष्णव बनने के लिए आए हैं। और हम किसी पद के लिए नहीं आए, हम यहाँ किसी और चीज के लिए नहीं आए कि मैं बहुत बड़ा स्पीकर बनने के लिए आया हूँ, या मैं बहुत अच्छा गायक बनने के लिए आया हूँ, या मैं बहुत अच्छा क्या कह सकते हैं, धन कलेक्शन करने वाला बनने आया हूँ। एक्चुअली इस्कॉन में ये सब बनने के लिए जो आया है वो कभी रहे नहीं। वो जो बड़ा बनने के लिए आया है वो क्या हो गया है, खत्म हो गया है। हाँ, लेकिन जो आया है क्या बनने के लिए, भक्त। हम भूल जाते कि मैं क्यों आया है ना, भक्त बनने के लिए आया। और भक्त के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड है। अभी प्रभुपाद भक्त थे, उनमें सारी चीजें थी। बेस्ट प्रवचन देने वाले थे, बेस्ट कीर्तन वाले थे, बेस्ट मृद सब कुछ बजाने वाले थे, बेस्ट प्रचार करने वाले, बेस्ट ग्रंथों का वितरण करने वाले। क्या नहीं था प्रभुपाद में, बताओ कौन सी ऐसी चीजें जो नहीं थी, सब कुछ था, ऑलराउंडर। तो इस प्रकार से हम भूल जाते कि भक्त बनने से सारी चीजें हमारे अंदर ये हो जाएगी। हम सब बन जाते हैं लेकिन फाइनली देखते कि अरे इतने साल हो गए मैं भक्त ही नहीं बना, बाकी सब कुछ बन गया। तो इस प्रकार से हमें सावधान रहना चाहिए और ये ट्रेनिंग जो एस्पेक्ट है, हाँ, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। और प्रभुपाद के ग्रंथ रियली अमृतमय हैं जिनको हमें भक्तों के संग में पढ़ना चाहिए। हरे कृष्णा। श्री उपदेश अमृत के रूप गोस्वामी के श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे।